नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य
नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं
नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये
ततो जयमुदीरये।
नष्टप्रायेष्व भद्रेषु
नष्टप्रायेष्व भद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया
नित्यं भागवत सेवया
भगवत्युत्तम श्लोके
भगवत्युत्तम श्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
कौन सा श्लोक?
14
ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंध 22वां अध्याय चारों कुमारों से पृथ्वी महाराज की भेंट। श्लोक संख्या 14। भवत्सु
भवत्सु
कुशला
कुशला
प्रश्नः
प्रश्नः
आत्मा
आत्मा
आरामेषु
आरामेषु
न इष्यते
इष्यते
कुशला
कुशला
अकुशलाः
अकुशलाः
यत्र
यत्र
न
संति संति
मति
मति
वृत्तयः
वृत्तयः।
भवत्सु कुशल प्रश्न
भवत्सु कुशल प्रश्न
आत्मा रामेषु नेष्यते
आत्मा रामेषु नेष्यते
कुशला कुशला यत्र
कुशला कुशला यत्र
न संति मतिवृत्तयः
न संति मतिवृत्तयः।
भवत्सु कुशल प्रश्न
भवत्सु कुशल प्रश्न
आत्मा रामेषु नेष्यते
आत्मा रामेषु नेष्यते
कुशला कुशला यत्र
कुशला कुशला यत्र
न संति मतिवृत्तयः
न संति मतिवृत्तयः।
भवत्सु कुशल प्रश्न
भवत्सु कुशल प्रश्न
आत्मा रामेषु नेष्यते
आत्मा रामेषु नेष्यते
कुशला कुशला यत्र
कुशला कुशला यत्र
न संति मतिवृत्तयः
न संति मतिवृत्तयः।
भवत्सु कुशल प्रश्न
भवत्सु कुशल प्रश्न
आत्मा रामेषु नेष्यते
आत्मा रामेषु नेष्यते
कुशला कुशला यत्र
कुशला कुशला यत्र
न संति मतिवृत्तयः
न संति मतिवृत्तयः।
भवत्सु कुशल प्रश्न
भवत्सु कुशल प्रश्न
आत्मा रामेषु नेष्यते
आत्मा रामेषु नेष्यते
कुशला कुशला यत्र
कुशला कुशला यत्र
न संति मतिवृत्तयः
न संति मतिवृत्तयः।
भवत्सु कुशल प्रश्न
भवत्सु कुशल प्रश्न
आत्मा रामेषु नेष्यते
आत्मा रामेषु नेष्यते
कुशला कुशला यत्र
कुशला कुशला यत्र
न संति मतिवृत्तयः
न संति मतिवृत्तयः।
भवत्सु
भवत्सु
आपसे
आपसे
कुशल
कुशल
सौभाग्य
सौभाग्य
प्रश्न
प्रश्न
सवाल
सवाल
आत्म आरामेषु
आत्म आरामेषु
सदैव
सदैव
आत्मिक आनंद में मग्न
आत्मिक आनंद में मग्न
न इष्यते
न इष्यते
कोई आवश्यकता नहीं होती,
कोई आवश्यकता नहीं होती।
कुशल
कुशल
सौभाग्य
सौभाग्य
अकुशलाह
अकुशलाह
अकुशलता
अकुशलता
यत्र
यत्र
जहाँ
जहाँ
न कभी नहीं
कभी नहीं
संति
संति
रहते हैं
मतिवृत्तयः
मतिवृत्तयः
कोरी कल्पना
कोरी कल्पना। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। पृथु महाराज ने आगे कहा, हे महाशयो, आपसे आपकी कुशल तथा अकुशल पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप नित्य आध्यात्मिक आनंद में लीन रहते हैं। आप में कुशल तथा अकुशल की मानसिक वृत्तियां पाई ही नहीं जाती हैं। तात्पर्य
तात्पर्य श्री चैतन्य चरितामृत अंत लीला चौथा अध्याय चौथा अध्याय 176 में कहा गया है, द्वैते भद्रा भद्र ज्ञान सब मनोधर्म, यही भल यही मंद यही सब भ्रम। इस संसार में शुभ तथा अशुभ केवल मन के भ्रम है, क्योंकि ऐसी वस्तुएं भौतिक जगत के संपर्क के कारण ही विद्यमान है। यह आत्म माया कहलाती है। हम प्रकृति द्वारा अपने को उसी प्रकार उत्पन्न मानते हैं जिस प्रकार की स्वप्न में हम अनेक वस्तुओं का अनुभव करते प्रतीत होते हैं। फिर भी आत्मा सदैव दिव्य होता है। भौतिक स्वरूप से उसके प्रच्छन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह आवरण स्वप्न या सम्मोह सा होता है। भगवद गीता में 2 अध्याय 62 श्लोक में कहा गया है, संगा संजायते कामः, मात्र संगति से अनेक कृत्रिम आवश्यकताएं उत्पन्न होती है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते। जब हम अपनी वास्तविक स्वाभाविक स्थिति को भुलाकर भौतिक वस्तुओं का भोग करना चाहते हैं तो हमारी भौतिक इच्छाएं प्रकट होती है और हम अनेक प्रकार के भोग विलास के संपर्क में आते हैं। ज्यों ही भौतिक सुख की वृत्तियां उत्पन्न होती है, त्यों ही हमारी संगति के कारण उनको भोगने के लिए एक प्रकार की उत्सुकता होती है, और जब इस छद्म भोग से हम सुखी नहीं होते तो हमें दूसरा भ्रम उत्पन्न होता है जिसे क्रोध कहा जाता है, और क्रोध के प्रकट होने से भ्रम और भी प्रबल हो जाता है। इस प्रकार मोहग्रस्त होने पर हम श्री कृष्ण से अपने संबंध को भूलने लगते हैं, फलस्वरूप हमारी वास्तविक बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इस प्रकार हम इस भौतिक जगत में उलझ जाते हैं। भगवद गीता में 2 अध्याय 63 श्लोक में कहा गया है, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। भौतिक संगति से हम अपनी आत्म चेतना खो बैठते हैं, फलतः शुभ तथा अशुभ का प्रश्न उठता है, किंतु जो आत्माराम अर्थात स्वरूप सिद्ध है वे ऐसे प्रश्नों से परे हैं। आत्माराम क्रमशः आत्मिक आनंद में और अधिक उन्नति करते हुए भगवान की संगति को प्राप्त होते हैं। यही जीवन की सिद्धि है। प्रारंभ में कुमार स्वरूप सिद्ध निर्विशेषवादी थे, किंतु उत्तरोत्तर वे परमेश्वर की लीलाओं के प्रति आकृष्ट होते गए। निष्कर्ष यह निकला कि जो भगवान की भक्ति में सदैव रत रहते हैं उनके लिए शुभ तथा अशुभ की द्वैतता का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः पृथु महाराज कुमारों के लिए नहीं अपितु अपने लिए कुशल याचना कर रहे हैं।
ओम ज्ञानतिमिरांध्रस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्वजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगुणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते
भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने
नमस्ते
सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्रीअद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो प्रसंग ये चल रहा है कि चतुष्कुमार पृथु महाराज के दरबार में पधारे हैं। चतुष्कुमार बहुत बड़े प्रसिद्ध मुनि हैं। तो जैसा कि वैदिक सभ्यता में नियम है कि जब साधु पुरुष हमारे यहाँ आते हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, भले व्यक्ति राजा हो या रंक हो। तो चतुष्कुमारों को बड़े सही ढंग से उपयुक्त रीति से स्वागत किया, और ये भी एक प्रथा है वैदिक सभ्यता में कि जब कोई साधु आते हैं हमारे यहाँ तो उनकी सेवा तो करनी चाहिए, स्वागत तो करना चाहिए, परंतु कोई प्रश्न पूछने चाहिए। और किस तरह के प्रश्न होने चाहिए? ये नात्मा सुप्रसिद्धति, जिनके कारण आत्मा संतुष्ट हो जाए, जो हमारे आध्यात्मिक लाभ के लिए हो। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवे तयावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह करणभिः। ये श्लोक भागवत का है, आप में से कौन बता सकते हैं इसका अर्थ? राजेश कृष्ण। याद है? किसको याद है? प्रसिद्ध श्लोक है, कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता। तो जीव के लिए जीवन में इंद्र तृप्ति करना अर्थात हमारे काम को पूर्ण करना, यही उद्देश्य नहीं है। न इंद्रिय प्रीति, इंद्र प्रीति के लिए नहीं होना चाहिए। हमारे इंद्रियों के प्रति हमारा प्रेम है, स्नेह है, उनको हम सदैव संतुष्ट करना चाहते हैं, इसलिए हमारा प्रयास सदैव इसी दिशा में रहता है, कैसे हमारे इंद्रियों को हम संतुष्ट करें। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा। तो वास्तव में मनुष्य का उद्देश्य ये नहीं है कि अपने इंद्रियों को तृप्त करने के प्रयास में अपने सारा जीवन व्यर्थ गवाएं। मनुष्य के लिए उचित ये है कि वो तत्व के बारे में जिज्ञासा करे। तत्व अर्थात जो वास्तविक सत्य है, जो भगवान है, जीवन का ध्येय क्या है, ऐसे प्रश्नों के बारे में वो जिज्ञासा करे। तो जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी नो न अर्थ यह चे कर्म भी। तो हमारे कर्मों का और कोई भी अन्य उद्देश्य नहीं होना चाहिए। कैसे तत्व जिज्ञासा करें? और ऐसे जिज्ञासा प्रश्नोत्तर से हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ें। तो इस प्रकार की जिज्ञासा के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। परंतु जिज्ञासा किस संबंध में होनी चाहिए? तत्व जिज्ञासा, संसार जिज्ञासा नहीं। तो तत्व के बारे में, भगवान के बारे में जिज्ञासा करना आवश्यक है, क्योंकि ऐसे भगवान कृष्ण के बारे में जिज्ञासा करने से हमारी आत्मा की संतुष्टि होगी और संपूर्ण विश्व का कल्याण होगा। पिछली बार एक बार कभी एक श्लोक पर चर्चा किया था ना, मुनयः साधु पृष्टो हम भवद्भे लोक मंगलम यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो ये नात्मा सुप्रसिद्धति। कि सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के एकत्र हुए ऋषियों को कहते हैं, संबोधन करते हुए उनको अभिनंदन देते हैं कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि आपके प्रश्न भगवान कृष्ण से संबंधित हैं और इसलिए ये सारे जगत के कल्याण के लिए हैं। कल्याण अर्थात सौभाग्य, मंगल। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि सच्चा मंगल या कल्याण कृष्ण भक्ति में है। जिस हद तक भगवान कृष्ण की भक्ति हम कर रहे हैं, जिस हद तक हमने भगवान कृष्ण को हमारे जीवन का केंद्र बिंदु बनाया है, जिस हद तक हमारे जीवन के जितने भी इच्छाएं हैं, कार्य हैं, वो भगवान कृष्ण के संतुष्टि के लिए ही किए जाते हैं, उस हद तक हमारे जीवन में मंगल या कल्याण या सौभाग्य होगा। तो वास्तविक सौभाग्य की परिभाषा ये है, क्योंकि ये आध्यात्मिक स्तर है। भौतिक स्तर में भाग्य और सौभाग्य और दुर्भाग्य में भेद किया जाता है इंद्रिय तृप्ति के आधार पर। जो हमारे इंद्रियों को अच्छा नहीं लगता तो हम कहते ये अमंगल है, दुर्भाग्य है। जो हमारे इंद्रियों को अच्छा लगता है, जो हमारे मन को अच्छा लगता है, हम कहते ये सौभाग्य है। और वही चीज जो आज सौभाग्यकारी है वो कल दुर्भाग्यकारी हो सकती है। ये संसार की रीत है। वही चीज आज हमको सुख देगा और कल जाके दुख देगा। ऐसे होता है ना, कभी दो व्यक्तियों के बीच में कोई संबंध स्थापित हो जाता है, चाहे मित्रों का हो, पति पत्नी का हो, या सेवक और मालिक का हो, जो भी हो। ऐसे देखा जाता है अनेकों बार कि प्रारंभ में यह संबंध बहुत अच्छा रहता है और इस एक व्यक्ति से हमें बहुत सुख मिलता है, परंतु कल परिस्थिति बिगड़ जाती है और उसी सुख से हमें दुख मिलता है। व्यक्ति वही है, हम भी वही हैं, परंतु पहले जहाँ से हमें सुख मिल रहा था, जिसको हम मंगल मान रहे थे, कल्याणकारी मान रहे थे, आज बिल्कुल परिस्थिति विपरीत हो जाती है। इसके लिए कोई आप उदाहरण दे सकते हैं दैनिक जीवन से? कोई भी साधारण उदाहरण।
सूर्य, अभी इस ठंडी में सूर्य बहुत अच्छा लगता है, वही सूर्य सूर्य अगर धूप उष्णता बढ़ती है तो ना अच्छा नहीं लगता है।
बहुत अच्छा। तो सर्दी के मौसम में सूर्य की किरणें बहुत अच्छी लगती हैं, हमें सूरज में जाके बैठना अच्छा लगता है, परंतु गर्मी के मौसम में वही सूरज हमारे लिए बहुत पीड़ा का कारण बन जाता है, बहुत कष्ट हमें पहुंचाता है। सूरज वही है और हम भी वही हैं, परंतु पहले वो सूरज, उसी सूरज से हमें सुख मिलता था, अभी हमें दुख मिलता है। और कौन से उदाहरण? जीवन के कोई भी साधारण उदाहरण दीजिए।
खाने के चीज में घर से स्वीट जामुन एक दो खाने में अच्छा लगता है, वही 20-25 साल का ना है तो बहुत
कोई अच्छी चीज़ हमको लगती है, हम जब खाते हैं बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसी चीज़ को खा लेते हैं तो बहुत बड़ा दुख का कारण बन जाता है। जैसे किसी को कोई मिठाई बहुत पसंद है तो एक मिठाई दो मिठाई खाते हैं बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा वो खा लेते हैं तो फिर क्या होता है, बहुत कष्ट होने लगता है। मिठाई वही है, खाने वाला भी वही है, परंतु पहले ये सुख का कारण था, अभी वही मिठाई दुख का कारण बन जाता है। आप में से जो गृहस्थ हैं आप जानते हैं, आपने संसार में भी देखा है, जब बच्चे छोटे हैं होते हैं तो बड़ा आनंद आता है, वो हमारी बात मानते हैं, हमारे ऊपर निर्भर रहते हैं, बहुत सुख मिलता है बच्चों से, उनकी तोतली बोली आदि सुनकर बहुत अच्छा लगता है। आगे चल के वो तोतली बोली का परिवर्तन हो जाता है और कभी कभी कटु वचन बोलते हैं हमारे प्रति, अच्छा नहीं लगता। बच्चे वही हैं, हम भी वही हैं, पहले ये बच्चा सुख का कारण था, बाद में जाके दुख का कारण बन जाता है। ये हमारा शरीर है, जब हम युव अवस्था में रहते हैं तो शरीर की इंद्रियां प्रबल होती हैं और शरीर में बहुत जोश होता है, ताकत होती है, हम तरह तरह के कार्य कर सकते हैं, उछलते कूदते रहते हैं। परंतु वही शरीर जब बूढ़ा हो जाता है तो दुख का कारण बन जाता है। तो जो हमें दुख देता है उसको हम अमंगल समझते हैं, ये हमारी गलत धारणा है, क्योंकि हमारी विचारधारा क्या है कि हम शरीर हैं, हमारे शारीरिक भावना पे आधारित हमारी परिभाषाएं हैं जीवन की। मंगल क्या है, जो हमारे शरीर को सुख देता है, जो हमारे मन को सुख देता है, इंद्रियों को तृप्त करता है, ये मंगल है, ये कल्याण है, ये सौभाग्य है। और जो शरीर मन और इंद्रियों को कष्ट देता है ये बुरा है, ये अमंगल है, ये ऐसे हमारी विचारधारा होती है। तो हम भेद मंगल और अमंगल में, अच्छे और बुरे में, इस आधार पे करते हैं कि हमारे शरीर मन और इंद्रियों के ऊपर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। हम ये नहीं देखते हैं कि भले ये इस वस्तु से, इस व्यक्ति से हमें इस समय कष्ट मिल रहा हो, परंतु आगे चल के क्या ये हमारे भलाई के लिए है या नहीं है। प्रेयस और श्रेयस, ये दो शब्द आप जानते हैं, प्रभुपाद जी ने इनके बारे में बहुत कहा है, तो आप में से कौन श्रेयस और प्रेयस के बीच में अंतर समझाएंगे उदाहरण से? देवकी तनय को
प्रेयस यानी कि जिसका फल हमें तुरंत अच्छा मिलता हो, जैसे कि प्रभुपाद उदाहरण लेते थे स्कूल, बच्चा जो होता है वो स्कूल जाना नहीं चाहता क्योंकि उसको भी दुख लगता है स्कूल जाना, लेकिन वही आगे के यानी कि प्रभुपाद कहते श्रेयस यानी कि उसका आगे भला होगा इसके बारे में वो कभी सोचता नहीं। श्रेयस यानी कि जो आगे हमारे जिसका फल हमें आगे अच्छा मिले, यानी कि प्रभुपाद जी से आध्यात्मिक इसमें बताते हैं इस तरह में कि अब जो हम भक्ति कर रहे हैं इसका हमें फल आगे जाके मिलेगा अच्छा आगे के जीवन में अगले जन्म में, तो ये श्रेयस कहते हैं। और प्रेयस यानी कि जो अभी हमें प्राप्त हो रहा है इसका फल शुभ कार्य तुरंत।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बच्चे को क्या लगता है, मुझे खेलना है, वो अभी के सुख के बारे में सोचता है, अभी जो अच्छा लगता है मुझे वो करना है और वो मेरे भलाई के लिए है। बच्चे की बुद्धि सीमित होती है, बच्चा इतना परिपक्व नहीं होता है अपने सोच विचार में, तो वो सोचता है कि मुझे जो अब अच्छा लग रहा है मुझे वही करना है। परंतु माता पिता ऐसा नहीं सोचते हैं, उनकी दृष्टि दीर्घ होती है, दीर्घ दृष्टि से वो देखते हैं कि ये बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा, फिर आगे चल के अनपढ़ बनेगा, फिर उसका भविष्य ठीक नहीं होगा। तो भले अब उसको खेलने की इच्छा है, परंतु उसको पढ़ाई के लिए हमें भेजना चाहिए, क्योंकि उसका भविष्य अच्छा हो जाएगा, भविष्य में उसको सुख मिलेगा। अभी खेलता रहे बच्चा तो अब उसको सुख मिल रहा है, परंतु बाद में चल के दुख मिलेगा उसको। इसलिए अभी पढ़ाई के लिए भेजना चाहिए, भले बच्चे को दुख हो रहा है इसमें। तो प्रेयस अर्थात जो इसी समय पर क्षणिक हमें जो सुख मिलता है उसको प्रेयस कहते हैं। तो इसी वर्तमान काल के सुख को के पीछे जब हम जाते हैं और हमारे भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं, तो ये अधिक बुद्धि का लक्षण नहीं है। अभी हमें थोड़ा बहुत सुख मिले, परंतु उसके बाद बहुत दुख मिले इसके कारण से, तो क्या फायदा है फिर? तो प्रेयस बुद्धि संसार में है, बहुत प्रचलित। अभी मुझे क्या मिलेगा, अब मुझे चाहिए, बाद की बात बाद में देखेंगे। तो ये राजसिक और तामसिक वृत्ति है। मैं अब ये करके ही रहूंगा, बाद में जो हो सो हो, देखा जाएगा। हाँ, ऐसे कहते हैं ना लोग, अभी भोग करेंगे, बाद में जो होगा देख लेंगे। परंतु जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वो भविष्य के बारे में भी सोचता है, और वो देखता है कि आगे चल के मेरे लिए जो भलाई है वही हमें करना चाहिए। बिल्ली है क्या? अब बिल्ली को भी क्लास अटेंड करना है, करने दो उसको। ये भी हमारे परिवार में ही है, ये बिल्ली बहुत भाग्यशाली है। आप सबका संग मिल रहा है, आप सब कृष्ण प्रसाद खिलाते हो और हरि नाम सुनने को मिलता है, और आपकी सेवा भी करती है चूहे खा के।
टाइम पास भी करते,
टाइम पास कर ज्यादा खेलना नहीं चाहिए ना, नहीं तो आसक्ति हो जाएगी। और मृत्यु के समय फिर बिल्ली के बारे में सोच के प्राण त्यागोगे तो क्या होगा? अगले जन्म में बिल्ली बन के गोकुल धाम में आना होगा। लेकिन अंदर नहीं जाने देना चाहिए इसको। हाँ, रोकने का भी कोई तरीका नहीं है ना अंदर आने के लिए, कहीं से कहीं तो आ ही जाएगी। ठीक है, तो श्रेयस और प्रेयस, तो संसार में लोग प्रेयस को मंगल मानते हैं, श्रेयस के बारे में नहीं सोचते हैं। श्रेयस अर्थात जो वास्तविक हमारे लाभ के लिए है, जो इसके लिए थोड़ी गहराई से सोचने की आवश्यकता है। तो जिस प्रकार से देहात्म बुद्धि के अनुसार, शारीरिक बुद्धि के अनुसार भी हम दीर्घकालीन लाभ और तत्कालीन लाभ में अंतर देखते हैं, जैसे कि छोटे बच्चे की पढ़ाई के बारे में, उसी तरह से शास्त्रों में हमें कहा गया है, बताया गया है कि हम केवल इस जीवन के अंत तक नहीं विचार करना चाहिए। वास्तविक श्रेयस वो होता है, वास्तविक हमारा कल्याण वो होता है जो हमारे आने वाले जन्मों के बारे में हम सोचते हैं। अभी हम बच्चे को पढ़ाई करवाएंगे, फिर वो अच्छा अच्छी नौकरी मिलेगी, पैसे कमाएगा, फिर क्या होगा? फिर वो बूढ़ा हो जाएगा, फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी, फिर क्या होगा? पुनर्जन्म। तो इसलिए वास्तविक श्रेयस, वास्तविक कल्याण ये है कि अगला जन्म उसे मिले ही नहीं। तो यदि ऐसे एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम कार्य करेंगे तो ये वास्तविक कल्याण है, वास्तविक लाभ है। और ये कैसे संभव हो सकता है? जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे तब जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। तो हे अर्जुन, जो तत्वतः मेरे जन्म और मेरे कर्म की दिव्यता को, अलौकिकता को समझ लेता है, तत्वतः उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, बल्कि वो मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। तो वास्तविक कल्याण इसमें है कि हमें पुनर्जन्म नहीं मिले, क्योंकि समस्त प्रकार के अमंगल कार्यों के उद्गम ये भौतिक शरीर है। ये भौतिक शरीर के कारण ही हमें कष्ट मिलते हैं। तीन प्रकार के, विविध प्रकार के ताप होते हैं, आप जानते हैं, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक। तो भौतिक शरीर को नष्ट करने के लिए केवल आत्महत्या करने से काम नहीं चलेगी, हमें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करना होगा, और आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करने के लिए केवल कृष्ण भक्ति ही एकमात्र उपाय है। इसलिए इस संसार में भला क्या, बुरा क्या, इसके बारे में लोगों का भिन्न मत होता है। अभी हमने उदाहरण देखा कि वही चीज जो हमें सुख देता है आज, कल दुख देगा। तो ये देश काल पात्र के अनुसार निर्भर है, मंगल अमंगल की बातें। इसलिए कुछ कह नहीं सकते कि क्या वास्तव में अमंगल है, मंगल है भौतिक जीवन में। दो चार हफ्ते पहले मैंने एक कहानी बताई थी, एक किसान की और घोड़े की, किसी को याद है? 2-4-6-8 हफ्ते पहले किसान घोड़ा आता है उसके खेत में। बताइए।
जब किसान अपने परिवार के साथ रहता है तब उनके इसमें घोड़ा आता है, तो कई लोग उनको बोलते हैं, अरे आपका तो बहुत अच्छा हो गया, आपको घोड़ा मिल गया। बाद में वो घोड़ा, वो बच्चों, उनका बच्चा ये करता है,
बैठता है
और उसके साथ काम भी करवा लेता है, लेकिन उसका पैर या कुछ तो उसको ये चोट लगती है,
घोड़े से घोड़ा उसको
गिरा देता है,
तो घोड़े से गिर जाता है लड़का।
तो लोग बोलते हैं, अरे आपका अमंगल दुख है ये घोड़ा। फिर आगे जाके युद्ध होता है, तो युद्ध में कई सारे लोगों को लेके जाते हैं, लेकिन इसका टांग कट होता है ना, इसके कारण उसको नहीं लेके जाते। तो लोग बोलते हैं, अरे आपका मंगल है या बच्चा है, ऐसे मंगल और अमंगल।
तो जब वो घोड़ा, एक जंगली घोड़ा आ जाता है इसके किसान इसके खेत में और इसके घर में आ जाता है, तो किसान उसको ले लेता है, बहुत महंगा घोड़ा होता है, और मुफ्त में मिल जाता है उसको घोड़ा। तो सारे गांव के लोग कहते हैं, ये चीन से एक कहानी है, तो कहते हैं, भाई आप कितने भाग्यशाली हैं, कितना सौभाग्य है आपका, ये घोड़ा आपको मुफ्त में मिल गया। ये बाजार में खरीदना हो तो हमें बहुत पैसे देने पड़ेंगे। अहो सौभाग्य आपका कि आपको घोड़ा मिल गया। तो किसान ने उत्तर दिया, सौभाग्य दुर्भाग्य कौन जाने। तो सब लोग सोचने लगे, बड़ी विचित्र बातें कर रहा है, ऐसे घोड़ा मुफ्त में मिल गया और ये कह रहा है सौभाग्य दुर्भाग्य कौन जाने। फिर वो किसान का लड़का बैठ जाता है घोड़े के ऊपर, घोड़ा जंगली होता है तो उसको हटा देता है, वहाँ लड़का गिर जाता है ज़मीन पे, उसकी टांग टूट जाती है लड़के की टांग टूट जाती है। तो गांव वाले आके कहते हैं, अरे श्रीमान चिंचौंग जो भी उनका नाम है, अरे देखिए आप कितना दुर्भाग्य, आपके बेटे के टांग टूट गया। तो कहते हैं सौभाग्य दुर्भाग्य कौन जाने। फिर ऐसे होता है कि पास वाले राज, पड़ोसी राज्य से आक्रमण होता है इस राज्य के ऊपर, और जितने भी नौजवान होते हैं उन सबको सेना में भर्ती कर लेते हैं, युद्ध के लिए भेज देते हैं, और इनमें से बहुत सारे नौजवान मर जाते हैं युद्ध में। परंतु ये जो लड़का होता है उसको युद्ध में नहीं भेजते हैं, क्योंकि इसकी टांग टूटी हुई होती है तो इसकी जान बच जाती है। तो लोग आके कहते हैं, अरे कितना सौभाग्य, कितना सौभाग्य आपका चिमचोंग, कितने देखिए क्या हुआ। तो वो बोलता है, सौभाग्य दुर्भाग्य कौन जाने। और ऐसे चलता रहता है। तो वास्तव में सही है ना, आज जिस जो चीज़ हमको भाग्य सौभाग्य लग रहा है कल जाके दुर्भाग्य प्रतीत होता है, आज दुर्भाग्य लग रहा है कल जाके को लोग कहेंगे सौभाग्य हो गया। इसलिए दुनिया में क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या अच्छा क्या बुरा, इसको समझना बहुत मुश्किल है। आज जिसको हम अच्छा समझते कल उसी को बुरा समझेंगे। इसलिए एक कोई मापदंड चाहिए निर्धारित करने के लिए कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, और वो मापदंड क्या है,
शास्त्र।
हाँ शास्त्र ठीक है, लेकिन शास्त्र में क्या बताया है कि मापदंड क्या है। कृष्ण भक्ति जितने ज्यादा, कृष्ण भक्ति ही एकमात्र परम सौभाग्यशाली एक चीज है। आप जानते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बतलाते हैं कि उत्तमा भक्ति के 6 लक्षण होते हैं। 6 लक्षण आप सबने भक्ति शास्त्री पढ़ी है ना, भक्ति शास्त्री कितने भक्तों ने पढ़ाई की, हाथ ऊपर कीजिए, आधा नहीं पूरा कीजिए। अच्छा तो आप बताइए भक्ति के 6 लक्षण कौन से हैं क्रम से, याद है? पहला क्लेश मतलब जो नष्ट करती है वो, किस क्या नष्ट करती है, क्लेश क्लेश अग्नि। फिर दूसरा शुभदा, शुभदा का अर्थ क्या है, शुभ प्रदान करने वाली, मंगल प्रदान करने वाली है भक्ति। फिर मोक्ष लघुताकृत, मोक्ष को तुच्छ करने वाली भक्ति है। चौथा सुदुर्लभा, अर्थात जो बहुत दुर्लभ है भक्ति को प्राप्त करना। फिर सांद्रानंद विशेषात्मा, इसमें इतना तीव्र आनंद आता है, घना घना आनंद, आध्यात्मिक आनंद। और छठा श्री कृष्णाकर्षणी, भक्ति ही एकमात्र वस्तु है जो कि भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित कर सकती है। तो इस तरह से दूसरा लक्षण कौन सा है, शुभदा, कि भक्ति ही एकमात्र शुभ या कल्याण या सौभाग्य प्रदान कर सकती है। भक्ति के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु ना तो मंगल है ना अमंगल है। परंतु एक दृष्टि से देखा जाए तो भक्ति की तुलना में अन्य कोई भी वस्तु अमंगल है, चाहे भौतिक दृष्टि से हम उसे मंगल माने या अमंगल माने। जैसे प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि संसार में जो सुख है और दुख है, दोनों ही दुख है वास्तव में, क्योंकि ये तथाकथित सुख है ये भी आगे चल के दुख का कारण ही बन जाएगा। कौन सा श्लोक भगवद गीता का, हाँ बोल बोला,
ये भी संस्पर्श जात होगा दुख योनो या एवते आदंत बंध कौन तेज नतेश्वर मते।
बहुत अच्छा, क्या अर्थ है इसका,
यानी कि जो
शब्द भेद करके,
ये ही संस्पर्श जा, यानी कि जो संस्पर्श है यानी कि इंद्रियों के स्पर्शों से जो आनंद मिलता है दुख योनो या एवते, तो इसका परिणाम दुख ही होता है। और इसका आधिंत बंत, इसका आदि भी है और इसका अंत भी होगा एक दिन, आधिन्तवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा, तो जो बुद्धिमान होता है इसमें रममान नहीं करता,
रमण नहीं करता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो यही संस्पर्श ज, संस्पर्श, स्पर्श ज मतलब उत्पन्न होना, भोगा, तो जो भोग, जो सुख इंद्रियों के स्पर्श मात्र से उत्पन्न होता है वो क्या है? दुख योनय एवते, दुख की योनि है, तो सुख दुख की माता है। बड़ा विचित्र है ना, सुख से दुख उत्पन्न होता है, तो हमें दुख नहीं चाहिए तो संसार के सुख से दूर रहना। जैसे एक माँ बच्चे को जन्म देती है, उसी प्रकार से सुख माता है और बच्चा कौन है? दुख। तो सुख दुख को जन्म देती है, योन या योनि। गर्भ से जितना हम सुख लेते हैं वो सुख से दुख ही उत्पन्न होता है। दुख योनय एवते, आदि अंतवंत, इसकी शुरुआत भी होती है सुख, ये सुख का शुरुआत होता है, अंत भी होता है। न तेषु रमते बुधः, इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं ऐसे तथा कथित सुख में रमण नहीं करते हैं। इसलिए ये दुनिया का सुख है ये भी दुख ही है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं संसार का सुख और दुख दोनों ही दुख हैं। और आध्यात्मिक स्तर का जो आनंद है और तथा कथित दुख है वो सब आनंद ही है। जैसे जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले गए प्रकट लीला में, व्रजवासियों को विरह का दुख अत्यंत गहराई से महत्व से अनुभव हुआ, परंतु ये जो विरह की भावना है ये आध्यात्मिक आनंद का क्या का शिखर है। तो आध्यात्मिक जगत में शुद्ध कृष्ण भक्ति में सब कुछ आनंद ही आनंद होता है, भले वो कष्ट भी क्यों न लगे। और भौतिक जगत में विपरीत है, बिल्कुल उल्टा है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि भगवान की सेवा करते करते साधकों के लिए भी जो भक्ति के अंदर जो तनाव आते हैं वो भी भक्ति के ही आनंद मानने चाहिए हमें। तो मापदंड फिर क्या है? स्टैंडर्ड हमारा है। क्या है? भक्ति, कृष्ण भक्ति ही मंगल है। कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त सब कुछ अमंगल है। द्वैत भद्रा भद्र ज्ञान सब मनोधर्म, यही भल यही मंद यही सब भ्रम। प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में चैतन्य चरितामृत के श्लोक को कहते हैं द्वैत। द्वैत मतलब द्वंद्व। किस तरह का द्वंद्व? भद्र अभद्र, ये मंगल है ये अमंगल है। भद्र अभद्र ज्ञान सब मनोधर्म, मनोधर्म अर्थात मन के वहम है ये सब, सपने स्वप्न की तरह है। ए भाल ए मंद, ये अच्छा है ये बुरा है, ए सब भ्रम, ये सब भ्रम है। कभी कभी सपने देखते हैं ना हम लोग, सपने सपने देखे हैं ना। आप ऐसे कितने भक्तों ने कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें कभी आपको कोई दुख मिला, कष्ट मिला? हाथ ऊपर कीजिए। कभी ऐसे सपना देखा? कभी ऐसा भी सपना देखा जिसमें आपको बहुत सुख मिला, आनंद मिला? ऐसे भी देखा है ना। लेकिन क्या उसमें कोई सत्यता है? रात में हम सोते समय तो मैं राजा हूँ है ना, बहुत धन है मेरे पास। सुबह को उठते हैं एन रे अभी हमको खेत में जाना है। सब जब तक सपना था कितना अच्छा लग रहा था, मैं राजा हूँ राजा हूँ, लेकिन जागते से पता चला कि अरे ये नहीं है। उसी प्रकार से कभी कभी लगता है कि एक शेर पीछा कर रहा है हमारा, पसीने छूट जाते हैं। कभी कभी सपने में भी चिल्लाता है व्यक्ति, चिल्लाते हैं ना कभी कभी लोग ऐसे होता है रात में नींद के समय नींद में ही चिल्लाते हैं कभी कोई लोग, तो बुरा सपना आ जाता है ऐसे तो, लेकिन जागते ही पता चलता है कोई शेर नहीं था, कुछ कोई नहीं था। तो सपने का सुख और दुख कैसे होता है, वैसे ही जागृत अवस्था में भी सुख दुख वैसे ही होता है, कोई फर्क नहीं है ज्यादा। फर्क इतना ही है कि पहले हम रात का सपना देखते हैं, यहां दिन का सपना देखते हैं। प्रभुपाद जी ऐसे समझाते हैं कि रात के सपने में और दिन के सपने में ज्यादा फर्क नहीं है। रात का सपना थोड़े क्षणों तक रहता है, दिन का सपना एक थोड़े सालों के लिए रहता है, वर्षों के लिए रहता है बस। जब हमारी मृत्यु हो जाएगी फिर पिछले जन्म में क्या सुख दुख था वो क्या याद रहता है हमें? नहीं रहता है। यहाँ जीते जी भी अपने सपने हम बनाते हैं। आपने कितने लोगों को सुना आपके सपने पूर्ण कीजिए, आपके सपनों के पीछे आप जाइए, ऐसे बहुत प्रेरणा देने वाले प्रवचनकार होते हैं जो आजकल खास करके लोगों को प्रेरणा देते हैं। फॉलो योर ड्रीम, मतलब अपने स्वप्न के को साकार करो, जो भी आपका सपना है। लेकिन परंतु ये है कि सपना तो सपना ही है ना, कब तक रहेगा ये? इसलिए रात का स्वप्न दिन का स्वप्न अधिक अंतर नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं। दोनों का सुख दुख बिल्कुल बराबर ही है। सच्चा आनंद कृष्ण भक्ति में ही है, बस यही हमारा मापदंड होना चाहिए। सबसे मंगल शुभदा, और ये मंगल भक्ति के प्रारंभिक अवस्था में ही प्राप्त हो जाता है। पहले दो लक्षण जो हैं क्लेशग्नि और शुभदा, ये साधन भक्ति की अवस्था में आते हैं। फिर मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा बाद वाले दो लक्षण भाव भक्ति के स्तर में आते हैं, और सांद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्णाकर्षिणी ये कृष्ण प्रेम की अवस्था में प्राप्त हो जाती हैं। तो भक्ति के प्रारंभिक अवस्था यथा साधन भक्ति में ही सुदुर्लभ शुभदा ये आ जाती है, मंगल जीवन में आ जाता है। तो सच्चा मंगल यदि हमें चाहिए तो बस कृष्ण भक्ति में हमें लगे रहना चाहिए। और चतुष्कुमार तो भगवान के भक्त हैं, बड़े मुनि हैं, भगवान की विशेष कृपा उनको प्राप्त हुई है, तो उनको कोई ऐसे पूछने की आवश्यकता नहीं थी ना कि आपके जीवन में सब कुशल मंगल है ना। जब संसार में हम लोगों को मिलते हैं ऐसे कहते हैं ना, कुशलम वा संस्कृत में कहते हैं, सब कुछ कुशल मंगल है ना आपके जीवन में, सब ठीक ठाक चल रहा है ना। तो चतुष्कुमारों से ऐसे प्रश्न पूछने का क्या प्रयोजन, क्या उद्देश्य, क्या फायदा है? वो तो जब कृष्ण भक्ति में हैं तो उनके लिए सब मंगल ही है। इसलिए पृथ्वी महाराज कहते हैं आपसे ऐसे प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है, केवल उन लोगों के लिए ये लागू होता है जो भगवान कृष्ण को भूल चुके होते हैं। तो हमारे जीवन में वास्तविक मंगल यदि लाना है तो कृष्ण भक्ति में स्थिर रहना है बस। तो ये उपदेश हम इस श्लोक और तात्पर्य से प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। अरे सुवर्ण गौर हरि का यहाँ था ना,
तलाव के लिए
रोजगार वाले आ रहे करके बोल के गए।
हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? आज थोड़ी देर हो गई मुझे, बहुत ज़्यादा देर हो गई आने के लिए, कुछ कार्य हो गए बेलगाम में। तो आप सबकी सेवा कैसे चल रही है? बैल कैसे हैं? झगड़े चालू हैं अभी भी?
का चालू रहेगा,
चालू रहेगा। लेकिन ज्यादा गंभीर या कम? ठीक ठाक। और खेती अभी बारिश में थोड़ा नुकसान हो गया होगा,
थोड़ा सा हुआ है तो इसकी भरपाई देखने क्या होता है, क्योंकि ज़्यादा नहीं हुआ बाहर के दूसरे लोगों की तरह भी बाहर जो बहुत जल्दी जल्दी सब करी है इसलिए ठीक हो गया। अभी दूसरा जो विंटर का क्रॉप है उसको डाल रहे हैं प्रोसेस जो उसको आगे को तैयारी कर, बारिश में उतना तकलीफ नहीं होता जितना सर्दियों में होता है, लेकिन सब जगह पे सूखा रहता है तो जानवर हरा खाने के लिए आते हैं, पूरा खोले के लिए जरूरत पड़ेगी शायद।
और सब्जी
सब्जी
कैसे चल रहा है यहाँ भी यहाँ भी दोनों जगह हो रहा है, क्या उग रहा है अभी?
अभी कैबेज है, फ्लावर,
कैबेज फ्लावर,
लाल भाजी,
लाल भाजी,
नेवड़ा,
नेवड़ा, नेवड़ा क्या होता है?
बीन्स, टाइप ऑफ बीन्स,
बीन्स,
क्लैम्बर, क्लैम्बर होता
है, क्लैम्बर। अच्छा आ रहा है उत्पादन यहाँ की मूंगफली, मैंने खाई कल, किसी ने मूंगफली भेजा ना मुझे, शिंगा बहुत स्वादिष्ट,
सूरजपुर।
अच्छा बहुत आनंद से खाया मैंने, हालांकि खाना मुझे मना है ज़्यादा, लेकिन ये गोकुल धाम का है इसलिए क्या अरे मूंगफली को मूँग डाल के आराम से खाया मैंने, बहुत स्वादिष्ट है, फर्क पड़ता है, फर्क दिखाई पड़ता है, जो ऑर्गेनिक है, जो प्रेम से बना हुआ है, जो प्रेम के परिश्रम का फल है वो अलग ही होता है कुछ। तो फिर मूंगफली यहाँ भी दे दी सबको एकादशी, अच्छा अच्छा, बस यही अधिक से अधिक उत्पादन करो जितना हो सके, सब्जी हो, अनाज हो, ये सारी चीज़ें हो, और सबकी तबीयत बढ़िया रहेगी, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन रहेगा, सब ठीक ठाक रहेगा। और पानी का काम भी ठीक चल रहा है, पानी के काम
अभी तालाब आज से चल रहा है,
रोजगार
रोजगार
नहीं तो डेली पत्थर पोड़ रहे थे
तालाब का।
अच्छा
और डैम का कब शुरू होगा?
तालाब कंप्लीट होने के बाद में चल,
लेकिन इस साल में नहीं हो पाएगा, फिर
इस साल में चालू होगा, कंटिन्यू अगले साल होगा बारिश के बाद में।
मुरलीवादी प्रभु के खेत से बहुत आया चावल इस बार?
नहीं थोड़ा कम हुआ,
कम हुआ
लेकिन बारिश के पहले हम निकाला इसलिए थोड़ा सा
अच्छा हुआ,
अच्छा हुआ,
नहीं तो बिगड़ जाता।
और भी एक खेत का कटिंग करना है, और भी एक खेत में,
लेकिन वो बिगड़ नहीं गया?
नहीं अच्छा है, वो थोड़ा लेट वाला क्रॉप था, अच्छा है, बाकी लोगों का थोड़ा ये हुआ है, नुकसान हुआ है।
बैल चल रहे हैं ठीक से? और रसोई में कैसे चल रहा है, किचन सबको रिष्ट पुष्ट रख रहे हो?
खुद रिष्ट पुष्ट है,
दोपहर का प्रसाद उधर बना रहा है महाराज,
अंदर अंदर बना रहे हैं,
अंदर का टीम कितना भी
है। अच्छा तो कितने भक्तों के लिए अंदर बनता है? अच्छा तो यहाँ पर कम हो गया बनाना दोपहर में। और वहाँ का काम कैसे चल रहा है? वहाँ खेत में हल्दी आ गया
अभी,
और तिल
बढ़ रहे, तिल का अभी सूखना चाहिए हार्वेस्टिंग के लिए, और हॉर्स ग्राम भी सूखने और 10-15 दिन लगेंगे हॉर्स ग्राम को, फिर राम तिल काला तिल जो है उसको भी 10-15 सूखना चाहिए, और नया प्लॉट्स, नया छोटे छोटे प्लॉट्स करके हमने सैफ्लावर सनफ्लावर और फिर से तिल, वाइट तिल काला तिल और कैस्टर सब डाला है, सभी अंकुरित होके आ रहे हैं।
ठीक है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की
जय।
श्री गोकुल धाम की
जय।
श्रील प्रभुपाद की
जय।
गौर प्रेमानंदे
हरि।
आज हमारे बीच दो भक्त आए हैं, एक है हमारे मनन, वो अमेरिका में रहते हैं, परंतु आप सब के बारे में बहुत सुना था, यहाँ खेती गो सेवा सब चलती है, तो आप सब से मिलने आए हैं, यहाँ देखने आए हैं अमेरिका से, ये मनन प्रभु है, और बेंगलोर से सप्तगिरी प्रभु आए हैं, वो पहले भी एक बार आ चुके हैं, कम वर्ष फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार आ रहे हैं, लेकिन गोकुल धाम देखने की बहुत इच्छा थी, तो स्वागत करते हैं दोनों का।
हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल।
सबने प्रसाद लिया ना? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।